नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर स्थित कर्तव्य भवन 3 का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने नए भवन का निरीक्षण किया और इसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने भवन परिसर में एक पौधा भी लगाया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने लिखा कि कर्तव्य भवन सरकार की प्रतिबद्धता और प्रत्येक व्यक्ति की सेवा के निरंतर प्रयासों का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने भवन के निर्माण श्रमिकों की कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के लिए उनकी सराहना की और उनसे बातचीत भी की। कर्तव्य भवन 3 सेंट्रल विस्टा के व्यापक परिवर्तन का एक हिस्सा है। यह आगामी साझा केंद्रीय सचिवालय के कई भवनों से पहला भवन है। श्री मोदी आज शाम एक सभा को संबोधित भी करेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों द्वारा हंगामा किए जाने के कारण लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। लोकसभा की कार्यवाही जब दूसरे स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे शुरू हुई तो विपक्षी दल SIR के मुद्दे पर चर्चा की मांग के पक्ष में नारेबाजी करते हुए आसन के सामने आ गए। शोरगुल के बीच सदन ने बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा पेश किए गए संशोधनों के साथ मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024 पारित कर दिया। हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले जब लोकसभा पहली बार स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे शुरू हुई तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने मणिपुर राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत किया। राज्यसभा में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। पहले स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे तक सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो विपक्षी दलों ने SIR और अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। राज्यसभा में आज समुद्र माल परिवहन विधेयक 2025 पारित कर दिया गया। यह विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है। यह विधेयक भारतीय समुद्र रक्षा द्वारा माल परिवहन अधिनियम 1925 का स्थान लेगा। इसका उद्देश्य बंदरगाह से माल ले जाने के मामले में उत्तरदायित्वों, देनदारियों, अधिकारों और उन्मुक्तियों को स्थापित करना है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अश्लील सामग्री प्रसारित करने के आरोप में 43 OTT प्लेटफॉर्म को प्रतिबंधित कर दिया गया है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि इन नियमों के अंतर्गत OTT प्लेटफॉर्म कानून द्वारा प्रतिबंधित किसी ऐसी सामग्री का प्रसारण नहीं करने के लिए बाध्य होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने आज रेपो दर को 5.5% पर यथावत बनाए रखने का फैसला किया है। GDP दर के अनुमान को 6.5% पर बरकरार रखा गया है। स्थायी जमा सुविधा पर 5.25% और सीमांत स्थायी सुविधा दर तथा बैंक दर 5.75% रहेगी। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के आपदा प्रभावित धराली क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियां युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज धराली क्षेत्र का दौरा कर पीड़ित लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अब तक 190 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
जो रेस्क्यू अभियान चल रहा है उसमें मौसम भी एक बड़ी चुनौती है। सेना के लोगों के साथ मिलकर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। सेना के लोग वहां बढ़ चढ़कर ITBP, BRO और NDRF और हमारे राज्य की STRF, सभी आपदा प्रबंधन, जिला प्रशासन, सभी लोग वहां पर अब पहुंच रहे हैं। और कल जब घटना हुई उस घटना के बाद 190 लोगों वहां पर रेस्क्यू किया गया और वो सभी सुरक्षित हैं। जो हमारे गंगोत्री धाम में तीर्थयात्री हैं उनको भी नेलोंग घाटी की तरफ से निकालने की योजना बन रही है। जल्दी से उनको भी जो है वहां से निकाला जाएगा।
मुख्यमंत्री ने राहत और बचाव कार्य के लिए मौके पर तैनात कर्मियों से भी भेंट की। राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए धराली क्षेत्र में आवश्यक खाद्य आपूर्ति और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए 2 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। सड़क की मरम्मत करने, मलबा हटाने और अन्य आवश्यक कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टरों द्वारा भारी मशीनें पहुंचाई जा रही हैं। इस बीच सेना ने कहा है कि उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने की घटना के बाद उसका एक जूनियर कमीशन अधिकारी और 8 जवान अब भी लापता हैं। सेना के अनुसार एक त्वरित और समन्वित मानवीय सहायता तथा आपदा अभियान जारी है। इस अभियान के लिए पैदल सेना और इंजीनियरिंग टीम सहित 225 से अधिक सैन्य कर्मियों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।